एहेस्केल अध्याय चार, एहेस्केल अध्याय चार पद एक। और हे मनुष्य की संतान, तू एक ईंट ले। उनकी ईंटें 12x14 इंच की होती थी। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने खुदाई में ऐसी कई ईंटें निकाली है। इन पर वे अपना इतिहास लिखते थे। उनके पुरातत्व इन ईंटों से भरे हुए थे। ये मिट्टी की होती थी जिन पर वे खरोच कर लिखते थे। परमेश्वर ने एहेस्केल से कहा कि एक ऐसी ईंट पर यरूशलेम का नक्शा बनाकर उस पर घेराव का चिन्ह अंकित कर। एहेस्केल अध्याय चार पद दो से लेकर तीन तक। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तो लोहे की थाली चादर लेकर उसको लोहे की शहरपना मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना मुंह उसके सामने करके उसे घेरना, इस रीति से तू उसे घेर रखना। ये इसराइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। वो उन्हें सचित्र उपदेश देने जा रहा है। वो ईंट पर यरूशलेम का नक्शा बनाकर उसके चारों ओर सेना का चित्र बना रहा है। वो मेड़ों का चित्र भी बना रहा है जो दीवार को मारकर गिरा रहे हैं। तब वे लोहे की थाली लेकर अपने और इस ईंट के मध्य रखता है। वो दिखा रहा है कि परमेश्वर स्वयं ही उनके विरुद्ध है और उसने ठान लिया है कि उन्हें उनके बैरियों के हाथ में कर दें। झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे यरूशलेम बाबुल पर विजयी होकर आएगा और उन्हें मुक्त कराकर ले जाएगा, परंतु एहेस्केल कहता है ऐसा नहीं होगा। जो होगा वो इस चित्र के अनुसार होगा। दूसरे उदाहरण में वो चार तरीकों से उन पर सत्य को प्रकट करता है। ये कुछ अधिक कठिन है। एहेस्केल अध्याय चार पद चार से लेकर छह तक। फिर तू अपने बाएं पंजर के बल लेटकर इसराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस पंजर के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहे। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तो इसराइल घराने के अधर्म का भार सहता रहे, और जब इतने दिन पूरे जाएं, तब अपने दहने पंजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष की संति एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। परमेश्वर एहेस्केल से कहता है तू बाएं पंजर पर 390 दिन लेटकर इसराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख। वे इतने वर्षों तक मेरे विरुद्ध पाप करते रहे। यहां एक दिन एक साल को दर्शाता है। इसके बाद वो दूसरी ओर लेटता है, उसे निश्चय ही राहत मिली होगी। अब दयनीय ओर उसे 40 दिन लेटना था। मेरे विचार में तो वो पूरे समय लेटा ही नहीं रहता होगा। संभव है कि दिन ढलने पर वो जाकर अपनी सुविधा अनुसार लेटता होगा। वो उठता भी होगा और अन्य कार्य भी करता होगा, परंतु जब जब लोग उसे देखते थे वे उसे अपने बाएं पंजर पर लेटा देखते थे। वो प्रत्येक सुबह जाकर लेटता होगा और कहता होगा मैं इसराइल के घराने के अपराध उठाता हूं। तब वो यहूदा के अधर्म के लिए दयनीय ओर 40 दिन तक लेटा। एहेस्केल अध्याय चार पद सात और आठ। और तू यरूशलेम के घराने के लिए बाह उधाड़े हुए अपनी मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना, और देख मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घराने के दिन पूरे ना हो तब तक तो करवट ना ले सकेगा। अब यरूशलेम के भाग्य को दर्शाने के लिए वो तीसरा तरीका काम में लेता है। वो बाबुल की सेना को हरा नहीं पाएंगे, वो नाश किए जाएंगे। एहेस्केल अध्याय 4:9। और तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कटिया गेहूं यानी गेहूं की किस्म लेकर एक बासन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। अतः उसकी रोटी सब अन्न का मिश्रण थी। एहेस्केल अध्याय 4:9 में आगे लिखा है, जितने दिन तू अपने पंजर के बल लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। जब तक वो ऐसे लेटा रहेगा उसे यही रोटी खानी है। एहेस्केल अध्याय 4:10-11। और जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना अर्थात प्रतिदिन। अर्थात खाना और पीना नाप कर खाना और पीना है। हीन का छठवां अंश पीना। एहेस्केल अध्याय 4:11। लगभग 250 मिलीलीटर। एहेस्केल अध्याय 4:12। और अपना भोजन जौ की रोटियों की नाई बनाकर खाया करना और उसको मनुष्य की विष्ठा से उनके देखते बनाया करना। यरूशलेम की दशा घेराव के कारण ऐसी ही होगी कि भोजन और पानी की कमी हो जाएगी। पानी तक नाप कर दिया जाएगा। अन्न की कमी के कारण जो कुछ मिलेगा उससे रोटी पकाई जाएगी। लोग भूख से मर जाएंगे। ये बाबुल में प्रवासी इसराइलियों के लिए है। वे जाने कि यरूशलेम विजयी नहीं होगा और वो नाश होगा। लोग भूख से मरेंगे। एहेस्केल अध्याय 4:13। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इसराइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहां मैं उन्हें बरबस पहुंचाऊंगा। मैं उन्हें देश से बाहर करूंगा और वो ऐसी अशुद्ध रोटी खाएंगे। एहेस्केल अध्याय 4:14। तब मैंने कहा, हाँ यहोवा परमेश्वर, देख मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और ना मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए या फाड़े हुए पशु का मांस खाया और ना किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। हे परमेश्वर, मैं आजीवन शुद्ध रहा हूं और अब तू मुझे अशुद्ध भोजन करने को कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एहेस्केल अध्याय 4:15-17। तब उसने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, सो वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे।